देखिए आज रवीरज अगर बन जाते हैं, जैसे अमेरिका कहता है कि हमने वहां पे बना देना है, स्विट्जरलैंड की भी बात हो रही है, मतलब देखिए अगर आप ये करेंगे यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स इवन अगर आप। और एक बात मैं आपको तब बताऊं, मुझे मैं इसके बारे में तो उतना नहीं, मगर मैं वेस्ट के बारे में जो इस वक्त चल रहा है, वी मस्ट बी रेडी। आज अमेरिका के बारे में जिन लोगों के पास, मुझे कनाडा के बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकती, अमेरिका में जिस चीज के पास इवन अमेरिकन सिटीजनशिप का वीजा भी है ना, दे कैन रिवोक इट एनी मिनट, दे कैन रिवोक इट एनी मिनट, दे हैव ऑल द राइट, दे जस्ट नीड अ कॉज, और कॉज डिवेलप हो सकती है।
मैं आशा भाई जी मेरी आज एक बात सुन लें, ये जो कुछ भी हुआ है इसके बावजूद सऊदी अरब आज नहीं कल 6 महीने साल 2-3 के बाद इसराइल को तस्लीम करेगा।
नहीं नहीं, मैं इसकी तो बात देखिए, सऊदी अरेबिया ने तो इब्राहिम अकॉर्ड को साइन किया हुआ है।
क्यों एक नस्ल हमने मरवा दी है,
सऊदी अरब को क्या करें जी, सऊदी अरब तो लड़ ही नहीं सकता, उनके लिए तो लड़ने हम जाते हैं।
मैं वही बात कर रहा हूँ, जब हम नहीं लड़ सकते तो फिर अमन के साथ जो मुआहदा हो सकता है वो कर लें।
नहीं वैसे
अमन कौन सा, नहीं कौन सा अमन,
नस्ल मरवा दी आपने, एक नस्ल उनकी खत्म करवा दी है, और चलो आजादी मिल जाती तो।
अच्छा ये मुझे राशिद भाई, यहाँ पे मुझे 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 गम होता है जब आप ये बात करते हैं। मेरा मैंने अपनी जब से वोट संभाली, पाकिस्तान ने अगर कुछ किया है ना, तो आपको मैं बताती हूँ इंडिया ने भी, मतलब उनकी रॉ इज वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव हमारे आदमियों ने, हमारे पॉलिटिक्स
रॉ नहीं है, दैट्स मोसाद, मोसाद का रैली रैली अदारा है।
देखिए नहीं, या तो अगर हम मुसलमान भी मुत्तहिद होकर, ये लड़ाई का वक्त था, लड़ते ना।
नहीं नहीं, वो तो देखिए वो दे ब्रॉड
निकालने देते थे, अब इस हालात के अंदर आपने खामखा बंदे मरवा दिए, फायदा क्या हुआ? मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि या तो ठीक है आप लड़े, बिल्कुल लड़े, लेकिन जब नहीं लड़ रहे, कोई उनका साथ ही नहीं दे रहा, वो बेचारे मजबूर बेबस भूखे प्यासे मारे गए।
मगर वो कहते हैं ना, रेवोल्यूशंस या जब चेंज आता है तो उसमें सम पीपल पे द प्राइस, दैट्स व्हाट इट इज।
नहीं, जब ईरान में रेवोल्यूशन आया 79 में, तो सबसे ज्यादा तो ये वेस्ट ही बोला था कि जी ये सारा खत्म हो गया है, ईरान को हम खत्म कर देंगे, ईरान में मौलवी बैठाए हुए हैं, वो अल खैरी एक होते थे जो उनके चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 400 बंदों को या पता नहीं 500 बंदों को लगाया था, गद्दारों को फांसी, तो वो तब भी यही बातें हो रही थी, तब भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा था। ईरान से उन्होंने ईरान के लिए क्या किया, एक उन्होंने मिसाइल तक नहीं चलाया, अब लड़ाई हुई है, हजारों फलस्तीनी, वो हजारों इजरायली मारे हैं ईरान ने।
राशिद भाई आपने आपको पता है, आप जरा गूगल करके देखें राशिद भाई, ये जो कल बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ है ना, आपको पता है इसके लिए कितना पैसा खर्च, आपको पता है इस पे कितना पैसा इसकी लॉबिंग में खर्च हुआ? गूगल इट, मेरे पास कल डिटेल्स मुझे मिली है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, जिसमें प्रेसिडेंट को भी मिला, जिसमें एवरीबॉडी गॉट देयर शेयर। और कल बीबीसी की रिपोर्ट थी कि मार-ए-लागो में जितने डिनर्स हुए हैं और जितने लंचेस हुए हैं, जिस तरह से इसकी लॉबिंग की गई है, एवरीबॉडी वॉज सोल्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी मॉरल्स एंड हमारी एथिक्स आर एट वेरी लो लेवल पूरी दुनिया में। और वेस्ट जो हमेशा पैगंबर था ह्यूमन राइट्स का, इवन वहां पर भी मनी टॉक्स, आप अमेरिका की बात कर लीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट, तो आपको पता है कि कितने इस वक्त बिलियनर्स की बात हो रही है, इस वक्त आम आदमी की बात नहीं हो रही। और सऊदी अरेबिया की जब आप बार बार कहते हैं, तो सऊदी अरेबिया यूएई दे आर मोर इनटू द मनी मेकिंग बिजनेस रादर देन इन द ह्यूमैनिटी बिजनेस।
ईरान के इंकलाब की मैं आपको बात बता देता।
अच्छा, उसको इज देयर एनी चांस कि हम इसको मंडे को बात कर सके, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया।
ओके फाइन
भाई, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल थ्री ऑफ यू टू बी विद मी, बिकॉज आपकी नॉलेज का वी विल वॉन्ट टू टेक एन एडवांटेज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। तीनों भाइयों का बहुत शुक्रिया। द ब्रदर हु कॉल्ड फ्रॉम, भाई प्यारे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, एंड आई लुक फॉरवर्ड मंडे वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस। और मेरे रियाज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट ऑल थ्री ऑफ यू विद मी टूमोरो, नो मंडे आई मीन मंडे, एंड वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द सेम सब्जेक्ट। मेरा टाइम ओवर हुआ, इन लोगों ने आगे कवर करना है, तो चलिए साहब चंदे कमर्शियल्स, विल कम बैक, प्लीज स्टे ट्यून्ड।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
एशियन फूड सेंटर दी सारिया ही लोकेशन ते 26 जून तो 6 जुलाई तक लग चुकी है कैनेडा डे सेल। वी पॉन्ड लक्ष्मी मल्टीग्रेन आटा 899, 1.6 किलो सवेरा देसी घ्यो 2399, 216 बैग वाली टी इंडिया 999, 341 ग्राम सवेरा पनीर 399। इस तो अलावा ताजे फल फ्रूट सब्जियां दाला इंडिया वाले भांडे सारा कुछ अंडर 1 रूफ ही मिलता है। कैनेडा डे सेल एशियन फूड सेंटर दी सारिया ही लोकेशन ते। कॉल एट 416-740-3262।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन 9058747171।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
Tired of missing your favorite Indian shows? Introducing Fastway IPTV, your gateway to 11,000 plus channels and 150,000 plus movies and series, all in one box. Catch up TV, full HD streaming, VOD and regional channels. One-time payments, long-term peace of mind. Just $216 for 2-year subscription and 3 4K IPTV box. Just $360 for 5-year subscription and 3 4K IPTV box. Call now 866-692-4788 and bring home the ultimate South Asian entertainment experience. Free delivery all over Canada and US. Fastway IPTV, entertainment your way.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी। तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी। एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
ताजा सब्जियां ली तुहाडा अपना फार्म कैलगर सब्जी फार्म, जिथे तुसी ले सकदे हो निखरे पौधे, मिट्टी, गमले अते हर तरह दे फुल ते सब्जियां दी पनीरी। अपने घर विच कोई भी सब्जी या फुल दे पौधे उगाण लई कैलडन सब्जी फार्म ते आओ। असी सवेरे 9 बजे तो शाम 8 बजे तक तुहाडी सेवा लई हाजिर हां। 12050 एयरपोर्ट रोड कैलडन, जां तुसी फोन करो 905-840-9000 905-840-9000।
Valia Traffic Legal Services se janab RS Valia.
Careless driving,
speeding ya phir accident,
fail to remain stop at the scene,
red lights ya phir seat belts,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस
रेसिंग स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट वाइल यूजिंग फोन
स्पीडिंग
आरएस वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे 9054542112
वहमों गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल बाइंग और सेलिंग
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं घर की इवैल्यूएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 एम डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ जनाब गर्मा गर्म खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच गई शाजिया मलिक साहब उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु कैसी हैं आप
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु वैसे ही हैं हम
कोई तब्दीली नहीं है
भैया देखो मैंने बड़ी दफा एक्सप्लेन किया ना तो आप हमें खाद में लगा सकते हैं ना हमारा कद बड़ा हो सकता है ना हमारे चेहरे के कोई झुर्रियां जा सकते हैं ना हमारी एज जो है 20 साल हो सकती है तो अब ये कुछ नहीं हो सकता ना और ये भी नहीं हो सकता कि मैं 1945 के बजाय 2020 में पैदा हो जाऊं है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता कि ट्रंप साहब आपके रैम खा जाए है ना हाँ, तो ये, कुछ ये भी नहीं हो सकता इसलिए हमारे हाल वैसे ही है
ऐसे
हाँ है। और आपके भी हाल खराब होने चाहिए क्योंकि आपका तो क्रिप्टो का भी अभी हालात खराब है तो इसलिए
मतलब खुद के खराब है तो हमारे भी नमक छिड़कना जरूरी रह गया
नहीं होता मतलब ना बंदा
दूसरे को
खुश हो तो
दूसरे को दुखों को ना याद दिलाए
नहीं नहीं अगर मैं ना खुश हूँ तो तुम खुश क्यों हो तुम्हें भी ना खुश होना चाहिए
अच्छा,
ना
ये वाली फिलॉसफी
हाँ ये वाली फिलॉसफी है मरा हमारा तो गाय मरा है मरा लेकिन जो कजन का गाय मरा ना उसका ज्यादा खुशी है ऐसा है हमारा
दिस इज कॉल्ड देख रहे हैं आप तमाम सामान्य इस चीज को जो है वो ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव मतलब जरूरी था ना इनको छेड़ना इनको पता है कि हालात सही नहीं है लेकिन फिर भी और वो भी फ्राइडे के दिन बहरहाल चले जनाब
नहीं नहीं हालात क्या खराब कौन सा तुम कोई बाहर मच्छरों वाले लॉन में आज सो रहे हो आज तुम्हारे हालात ठीक है आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए खाली क्रिप्टो नीचे है सो तुम घर के अंदर रहे हो
ज्यादा नीचे हुआ तो फिर बाहर ही सोना पड़ेगा
तुम्हारी आदतें सुधर गई हैं अब
मैं तो हमेशा से सही था लेकिन दुनिया के हालात जो है वो बड़े तब्दील हो रहे हैं और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा वो जाएं किस तरफ
यस
और
मर जाएं क्या करें
अल्लाह को अस्तगफरल्ला ना करे अल्लाह ना करे को मर जाए फिर इस दौर ये दौर जिसमें हम जी रहे हैं ना खैर आपका तो मतलब थोड़ा ही टाइम रह गया
थोड़ा रह
हमारा हम जो जी रहे हैं सब लोग उसमें इन्फॉर्मेशन समझ लें कि वो ट्यूबवेल ट्यूबवेल आपने तो देखा ही होंगे ट्यूबवेल से पानी तेजी से बहना शुरू हो जाता है और बस फिर वो सारी नहरों में जाना शुरू हो जाता है तो बस समझ लें वो ट्यूबवेल ऐसा बह रहा है कि जिसको जो समझ आ रहा है
हाँ।
वो उसमें नहा रहा है
हाँ। जैसे भी नहा रहा है कच्चा पहन के नहा रहा है
मैं आपसे मिसाल इसलिए ट्यूबवेल की थी क्योंकि हम जब गांव जाते थे
हाँ।
जमीनों पर वहां पहली
अच्छी जमीनें थी वो दोस्त के भाई की
अब ये एयर पे बताना जरूरी नहीं
होता
ऐसी चीजें एयर पे मतलब मैं बता दूं कल को आप मुझे भी उठवा लें अगवा करा लें तो वही तो जागीरदार का बेटा है बहरहाल हम जब जाते थे ऐसे करते थे कहाँ जाते थे
और किसकी जमीनों पे जाते थे
तो वो ट्यूबवेल का पानी जो बहता पानी होता था वो बेसिकली सोर्स, एग्जाम्पल देने का मतलब है मेरे जहन में इसलिए आ गया कि एक सोर्स होता था, वहां से फिर सब नहरों में खेतों में पानी जा रहा होता। यही न्यूज का और इन्फॉर्मेशन का है एक सिलसिला कि एक कहीं से न्यूज चलती है और इतनी चल रही है कि हर आदमी जो है उसमें नहा रहा है, और नहाने के बाद असल चीज ये है कि वो साबुन अपनी मर्जी का लगा रहा है,
शैम्पू भी
अपनी मर्जी का लगा रहा है। तो जब तक पहुंचते एक इंसान, एक आम आदमी तक, वो अलिफ का बे हो जाती है। और वो सोशल मीडिया ने उसके ऊपर जो है कहते हैं ना कि ऐसी बिंदियां चिपकाई हैं कि उसके बाद तो उस इन्फॉर्मेशन का
उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा दिया ना
कि हाँ ये आपने वैसे मिसाल सही दी। वो जैसे होता है ना कि गोल्ड चांद गोल्ड का पानी चढ़ा दिया, तो भाई हम गोल्ड का पानी चढ़ाने से वो गोल्ड
नहीं हो जाएगा।
इसी तरीके से जो न्यूज और जो इन्फॉर्मेशन, समटाइम कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है नथिंग, वो किसी के ऊपर वो अटैक शायद जी, एक जो जो इन्फॉर्मेशन सीना बाय सीना पहुंची है ना, यानी मैन टू मैन पहुंची है, उसमें बहुत सारी फैब्रिकेशन हो गई।
जाहिर है।
और अब हम तक पहुंचते ऐसी चीजें उसमें एडिशन भी हो गई, कुछ माइनस हो गई। तो आज के कहना कि शाजा जी मैं सही हूं आप गलत हैं, और आप सही हैं या मैं गलत हूं, ये मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर ये है, अप्रोच ये है कि आप एक दूसरे को टॉलरेंस करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, रिस्पेक्ट करें।
एक्सपर्ट है अपने उसमें फील्ड में,
शाजा जी एक्सपर्ट भी मैं एक्सपर्ट की भी नहीं मानता।
हाँ, तुम्हारी बात एक हद तक ठीक है, क्योंकि वो जो एक्सपर्ट भी होता है ना, उसका भी अपना पर्सनल व्यू आ जाता है,
एक थॉट ऑफ स्कूल है,
बायस आ जाता है,
वो एक स्कूल से आया हुआ,
एक बायस आ जाता है उसका। हाँ बिल्कुल,
मैं एक्सपर्ट को भी नहीं मानता भाई, आप एक्सपर्ट की भी छोड़ दें। पहली चीज एक आपस में पैदा कर लें, दुनिया भर के जितने भी लोग, मैं मुसलमानों की तो बात ही नहीं कर रहा, हर इंसान की बात कर रहा हूँ, इसमें नथिंग पर्सनल स्पेसिफिक विद मुसलमान के वो करें, अगर वो कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल उनमें बड़ी कमी है, विटामिन डी की बड़ी कमी है। आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, आप बर्दाश्त करना शुरू कर दें। और अभी ये बात हो रही थी, आर पापा ने जो है गर्मा गर्म माहौल कर दिया था, बात जो दोनों जो तीन लोग थे बिल्कुल, जब मैं उनकी बातें सुन रहा था, शाजा जी बिल्कुल सही बात कर रहे थे अपनी अपनी जगहों पर। और जो राशिद साहब थे, जैसे उन्होंने कहा कि बात उनकी इस सेंस में 1% में ऐसे सही ले लेता हूं, उनको तो मैं एंडोर्स किसी को नहीं कर रहा, कि समटाइम क्या होता है कि जैसे अब मुझे मालूम है कि यार मेरे सामने एक 6x4 का आदमी खड़ा हुआ है, पर बहुत चौड़ा पहलवान टाइप का, तो मैं शायद उससे अगर भिड़ूंगा तो अभी मेरा नुकसान होगा। लेकिन अब दो बातें आती, अब मैं तो 6x4 नहीं हो सकता, मैं तो 5x7 ही रहूंगा, मैं अपनी हाइट या अपनी बिल्ड कितनी बना लूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, या तो मैं उसके अगेंस्ट में 6x4 का एक पहलवान हायर कर लूं, या एक किसी तरीके से सर्विस ले लूं, या कह लें कि अपने साथ में ला लूं जो 6x4 का जो पहलवान सामने खड़ा हुआ है वो उसे भेड़ गया। तो यहां क्या हुआ कि हमने देखा कि यार एक ताकतवर बहुत ताकतवर है, यानी माइट है वो इस वक्त, तो आप उस पर सर मारने से बेहतर है कि आप रिट्रीट करें, टाइम लें, और अपने आप को नहीं तो अपने रिसोर्सेस को इस काबिल कर लें कि आप उस ताकतवर के हम पल्ला आगे खड़े हो जाएं,
या आपको उसकी जरूरत ना रहे,
या आप उसकी जरूरत
इतने,
या आप इतने ताकत रहे। जो राशिद भाई की बात थी, मैं इस बात से एग्री करूंगा कि आपको याद हो, हम सभी जानते हैं, मैं रिलीजियस नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात हो रही थी उसको कंटिन्यू करके फिर हम खबरों पर चलेंगे, माजरत में आपका टाइम ले रहा हूं। आपको याद होगा कि गज़वे अहद में जिस तरीके से मुसलमानों को डिफीट हुई अपनी गलती है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी उन तीरंदाजों ने और नुकसान हुआ और रिट्रीव किया उन्होंने, उसके बाद फिर ये सुलह हुदैबिया की बात आती है। मुसलमानों को अंदाजा हो गया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का जाहिर है, उनसे ज्यादा तो और कौन इसको समझने वाला था। उन्होंने बेहतरी इस चीज में ही समझी कि लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि चाहे अच्छा मुआहिदा भी जरूरी नहीं कि सारा आपके हक में भी था, वो आपके हक में भी नहीं था, वो आपने उस पर कॉम्प्रोमाइज भी किया, लेकिन वो जो मुसलमानों के अंदर जो उसम का एक एक, एक एक विजन था, एक उनका माइंड सेट था कि हमें एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा जिस पर अल्लाह हमें उस काबिल कर देगा कि हम आसानी से मतलब भी पता कर लेंगे। और जाहिर हम हज के लिए उमरे के लिए जा रहे थे उस वक्त भी, जब उन्होंने उसके ऊपर लगाई थी कि आप इस साल नहीं कर सकेंगे उसके बाद करेंगे, तो रिट्रीट किया ना, पीछे आए, अपने कामों में लग गए, अपने आप को मजबूत किया। आपको याद है कि अक्सर हम जैसे भी बात हो रही थी खालिद बिन वलीद की, کہ سیف اللہ جن کو اللہ نے خطاب دیا اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ یار خالد بن ولید جس جنگ میں ہوتے ہیں وہ جگہ ہم ہار ہی نہیں سکتے. تو پھر حضرت عمر نے جو ہے خلیفہ وقت نے ان کو جو ہے وڈرا کیا. انہوں نے کہا نہیں جناب, یہ سب چیزیں جو آنے والے وقتوں کے لیے پیٹرن سیٹ نہیں ہوگا, غلط امیج جا رہا ہے. اور انہوں نے جو سب کو ہی معلوم ہے اس پہ مجھے بتانے ضرورت نہیں. بات یہاں ہو رہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تو آپ دیکھیں وہی جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں نے اتنی طاقت اپنی بڑھا لی, مین پاور بھی, فائٹنگ پاور بھی, مال کے حساب سے بھی, کہ وہ جگہ جو آج خانہ کعبہ ہے ایک گولی چلائے بغیر, ایک تلوار اٹھائے بغیر وہ اس دروازے کے اندر آ جاتے ہیں. دس از دا میسج فار ایوری بڈی. ہم اس چیز کو بھول گئے, ہم جذباتی بہت ہیں مسلمان. بس مار دو, لڑ دو. آج ایران نے 4 میزائل مار دیے, 5 اور مار دو, گرا دو. پاکستان نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کو بھی 10 میزائل چلا دینے چاہیے. ترکی کیا کر رہا ہے؟ سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ اوکے فائن مین, یو آر رائٹ کہ ٹھیک ہے سم ٹائم ایک آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے ایز اے مسلمان, لیکن ان مسلمانوں کی تکلیف کیا ہوئی ہوگی؟ آپ کو یاد ہے اس وقت بھی کتنے لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم اس کو معاہدے کو نہیں ماننا چاہیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے اس چیز کی کمپلین کی, گلا کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس چیز کو ڈفرینٹلی دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے ان کا ویژن, ظاہر نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا سوچنا, ان کو اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ظاہر ہے ان کے صحابیوں نے تو سوال اس وقت بھی کیا تھا کیونکہ وہ تو تیار تھے لڑنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو ان سے جنگ لڑ لیتے. لیکن بات یہی ہے کہ سمجھداری اسی میں کہ جب آگے سے آپ کے پاس جو ہے وہ طاقت اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو لگے, احساس ہو کہ نہیں میں ابھی آج نہیں کر سکتا, ہاں 6 مہینے بعد کر لوں گا, 1 سال کے بعد کر لوں گا. اور سم ٹائم وہ جو بات ہو رہی تھی نا دنیا بھر میں ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے وقتی طور پر کسی معاہدے کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تو اگین اس کو دوسرے سے سیاسی کہ بھائی سیاسی بیان کون سے قرآن اور حدیث ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے کئی معاہدے ویسٹ بھی توڑتا رہا ہے تو, لیکن ٹیمپرری طور پر اگر
یونائٹ ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہیومن رائٹس,
کیا کیا کرتے ہیں,
ڈیموکریسی تو رائٹ ٹو ایگزٹ اینڈ
مائٹ از رائٹ ہے,
ہاں تو وہ ابھی یورپ کی کہاں.
آج مسلمان اس طاقت پہ نہیں آ رہا تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا. ہم نے خدا کا پیغام جو ہے جو ایک برداشت ہے دوسرے کو معاف کر دینے میں ہے, دوسرے کی ریسپیکٹ کرنے میں, وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے دور چلا گیا ہے. مسلمانوں میں ایک پلاننگ کی کمی ہے. ہم وہی بات ہے جیسے ابھی پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ پارلیمانی نظام پاکستان کا, اس پر سے پاکستان, میں 100% ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ یہ انتہائی فضول قسم کا سسٹم ہے. اس کو جتنی جلدی ختم کر دیں گے مجھے لگتا ہے کہ
پارلیمنٹ میں یہ بھی تو دیکھو نا بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں.
نہیں میں کہہ رہا ہوں تو یہ پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو, آئی ڈونٹ کیئر, اس کو جتنی جلدی ختم کر کے
تعلیم بھی تو ہونی چاہیے نا.
ون ونڈو سولوشن یعنی ون پاور کے اندر نہیں لائیں گے, چاہے وہ صدارتی نظام ہو یا اس کا آلٹرنیٹ آپ کچھ اور بھی لے آئے, لیکن یہ جو پارلیمانی نظام ہے دس از دا جوک. مجھے لگتا ہے پاکستان قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ جسے پچھلے کئی سالوں سے
نظام مذاق نہیں ہے, اس کو چلانے والے جو ہے نا مذاق
نہیں, نظام بھی تو چلانے والوں نے بنایا نا, انہوں نے بنایا
ہے نا, وہ مذاقیاں ہیں نا,
وہ آپ کے لیے کیا بنائیں گے؟
مطلب تو بس اسی لیے وہی
ایک عام شازیہ جی, میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا,
آپ کے پاس کوئی ویژن ہے, کوئی آپ کے پاس ویسا ہے کہ آپ اس کو چلا سکتے؟
کوئی نہیں.
جو جس وقت یہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وارز ہو رہی تھی تو گورا جو تھا, جو انگریز تھا, اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس ایک ویژن تھا. اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے کس جگہ پہ کیا کرنا ہے اور میں نے کس جگہ پہ کس جرنیل کو لگانا ہے اور میں نے اس جرنیل کو کیسے کرنا ہے. چرچل کی آپ کو سپیچ یاد ہے کہ لوگوں نے کتنے اعتراض اس کے اوپر کیے, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اصل میں بات لیڈر کی یہ ہوتی ہے کہ لیڈر کے پاس ویژن ہوتا ہے اور وہ آگے چلاتا ہے, جیسے کہ جناح صاحب کے پاس تھا. کتنا کہا نہرو نے اور گاندھی نے تمہیں یونائیٹڈ ہندوستان کا پہلا گورنر, یونائیٹڈ ہندوستان کا, اس نے کہا نہیں, ایک تو میری آئیڈیالوجی آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی اور اوپر سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اب جو ٹھان لی ہے وہ میں کروں گا, یو نو میں وہ کروں گا, اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ. آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک پرنسپل ہوتا ہے. ہم نے جو ہے پچھلے 75 ایئرز میں
कितने हमारे अपने पाकिस्तान में लोग हैं जिन्होंने कि जिना साहब को कितना क्रिटिसाइज किया, यूनाइटेड इंडिया के साथ होते तो हमारे भी मजे होते, हम भी वो सारे आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का हाल,
हिंदुस्तान के मुसलमानों से
आज पूछो, आज पूछो, नहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों से आपने क्या पूछना है, ये ममदानी से पूछ लो जो कि अभी न्यूयॉर्क का गवर्नर बनने वाला है, हालांकि उसका खानदान 200 साल पहले हिंदुस्तान से गुजरात से निकल के जो है अफ्रीका के अंदर सेटल हो गया, वो भी क्या कह रहा है, वो भी आज क्या कहता है कि जो मुसलमानों की वहां पे हालत है, ये जो हम सारा वक्त यहां पे बताते हैं, ये जो उनकी, यानी आप सोचें जरा थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें कि क्या ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था इसकी पॉपुलेशन वही थी जो कि इस वक्त है, तो यानी कि ये जो मस्जिदें गिराई जा रही हैं तो मुगलों को पूरे हिंदुस्तान में कहीं जमीन ही नहीं नजर आ रही थी, सिर्फ वो उनके मंदिर गिरा गिरा के उनके ऊपर मस्जिद, यानी एक रीजन होता है ना, एक रीजन सोचें आप कि ये उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी शॉप्स गिराई जा रही हैं, उनको जो है साइड पे लगाया जा रहा है, आप देख लो क्या हाल है, हर वक्त जो है मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं बाकी के भी जो हैं, जो सिख हैं, जो दलित हैं, जो जो क्रिश्चियंस हैं, हर वक्त वो अपना पेट्रियोटिज्म जो है वो प्रूव करने में लगे हुए हैं कि हम इंडिया के पेट्रियोटिक हैं। आपको याद है कि ये जो बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, ये आमिर खान टाइप के जो हैं, ये जो खान है, इनके ऊपर कितनी बदबख्ती आई हुई है कि जी तुम कैसे बोले, एक सेंटेंस उसने बोल दिया कि हमारे मुल्क में जो ये जो चल रहा है, ये जो इनटॉलरेंस, मैं और मेरी बीवी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को इस हिंदुस्तान में कैसे, उसको नसीरुद्दीन शाह पे आप देख लो कितना मतलब है, और ये वो लोग हैं जो सितारे हैं इनके, जो इनके मुल्क के सितारे हैं, हैं जी, उन सितारों के तो आप सोचें कि जो बेचारे गरीब मुसलमान है, अभी कल भी हमने संभल की आपको बताइए जो संभल पे रिपोर्ट आई है सारी वहां पे यूपी के अंदर कि किस तरह कॉम्प्लिसिट थी वहां पे गवर्नमेंट जो थी मुसलमानों के घर उनकी दुकानें गिराने में, और झूठ बोल रहे थे कि मुसलमान आर्म्स लेकर आए हुए थे, कोई आर्म्स उनके, तो ये विजन होता है लीडर्स का। सिख जो है आज भी रोते हैं ना, सिख आज भी रोते हैं हमारे साथ हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ, क्या कहा था उस वक्त जिना साहब ने, मास्टर तारा सिंह जो इनका लीडर था उसको क्या कहा था कि तुमने इनको जिनके के लिए बड़े मरे तुम जा रहे हो, एक गुलाम हिंदुस्तान में देखा, एक आजाद हिंदुस्तान में नहीं देखा, तुम पंजाब की डिवीजन मत होने दो पाकिस्तान का, नहीं दिया। आज रोते हैं ना, आज जिना को याद करते हैं, आज रोते हैं, कहते हैं काश हमने जिना की बात सुनी होती, ठीक है। तो ये जो विजन होता है ना, ये बात है, इस वक्त हमारी पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि सिस्टम तो गोरे का ही है लेकिन हमने उस सिस्टम की शक्ल इतनी बिगाड़ दी है, और जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, जरा देख लें कि उन्होंने कोई चार जमातें भी पढ़ी हों, देख लें आप। तो अगर जो है आपके पास विजन नहीं है और फिर आपके अंदर करप्शन भी है माशाल्लाह बहुत सारी, मुल्क से भी मोहब्बत नहीं है, प्रॉपर्टियां आपने बाहर बनानी है, जैसे ही इलेक्शन हारने हैं तो हमने बाहर भाग के चले जाना है, तो फिर आप जो है कैसे चलाएंगे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है कनाडा में नहीं चल रहा, इंग्लैंड के अंदर नहीं चल रहा, यूरोप बाकी में नहीं चल रहा, हर जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है ना। तो अमरीका में जाहिर है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बाकी एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, आपके मुल्क में इसलिए नहीं चलता है कि उसको जो चलाने वाले हैं उनके खुद के आप किरदार देख लो वो क्या है।
वैसे ही शायद
सिस्टम खराब नहीं होता, उसको चलाने वाले, यानी ये वही बात है कि जिस वक्त वो नया नया VCR आया ना और वो जो आई तो सारे मौलवियों ने कहना शुरू कर दिया, ओ तो ये तो जी हराम है, ये वो है, क्योंकि आप जो है इसके अंदर खराब फिल्में देखते हो। अब VCR खराब नहीं है, लोग खराब है, यानी कि सिस्टम खराब नहीं है, आप खराब हो कि आप उसके अंदर कोई गंदी फिल्म देखना चाहते हो, या आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी कोई फिल्म देखना चाहते हो, है ना, या मैसेज जैसी फिल्म देखना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर, सिस्टम दुनिया में बनाए जाते हैं उनको चलाने वाले होने चाहिए। और इस मुल्क के अंदर आपको इस वक्त कैनेडा के अंदर कौन से विजनरी नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, लेकिन सिस्टम चल रहा है, उसकी वजह यह है कि जिन्होंने ये सिस्टम बनाए थे इस मुल्क में ना वो विजनरी थे। अमेरिका के अंदर थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन को क्यों याद करते हैं, विजनरी थे, उन्होंने अमेरिका में एक सिस्टम बनाया है। चार्ल्स डी गॉल को क्यों याद किया जाता है जी फ्रांस में, इसलिए कि एक सिस्टम उसने बनाया था। बेन गुरियन वगैरह को इसराइल में क्यों याद किया जाता है, एक सिस्टम उन्होंने वहां पे बनाए थे, है ना, गोल्डा मायर वगैरह सिस्टम एक बनाए थे उसी के तहत। अब आपने नतन्याहू साहब ने अगर उसकी शक्ल बिगाड़ दी है, सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त की जो लीडरशिप है उसकी हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी यही प्रॉब्लम। मैंने तो आपको बड़ी दफा बताया कि जब हम बड़े हो रहे थे हम हिंदुस्तान की तरफ देखते थे, हमारे उस्ताद कहते थे हिंदुस्तान की तरफ देखो, अगर तुमने आजाद जर्नलिज्म करनी है हिंदुस्तान की तरफ देखो, अगर तुमने अपने मुल्क का सिस्टम चलाना है हिंदुस्तान की तरफ देखो। आज जो है आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ, एक ऑटोक्रेसी वहां के ऊपर चल रही है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। सिस्टम तो खराब नहीं है ना जी, सिस्टम तो उनका भी नेहरू और गांधी ने बनाया था और वो चलता रहा आज तक, आज से 11 साल के अंदर आप देख लें जरा कितनी डिग्रेडेशन इंडिया में आ गई है। तो बात वही होते हैं कि जो ऊपर बैठे होते हैं ना चलाने वाले, अगर उनके पास विजन नहीं है, उनका आज भी एक एक बड़ा लीडर हिंदुस्तान में आज रोता है कि मोदी जी ने हमारे मुल्क की रेप्यूटेशन खराब कर दी है। आज भी एक प्रोग्राम में कुछ लोग बैठे हुए थे और बड़ा उन्होंने चैलेंज दिया हमारे बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको भी, हाँ जी आ जाओ जी हमसे बात कर लो जी, तुम्हारी क्या औकात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का तो जीडीपी इतना है, फलाना है टमकाना है। आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर?
नहीं मैंने इस शो को सुना नहीं। अगर पाकिस्तान से क्या कर लें, पाकिस्तान से
हाँ आ जाओ हमसे बात कर लो, तो तुम्हारी मतलब है क्या हैसियत है, और तुम लोग तो जो सारे हो, तुम लोग तो जीत के ही नहीं आए हो, तुम्हारी तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है और तुम्हारे पास तो इतना जीडीपी नहीं है, तो इसका जवाब क्या है?
मैं खैर भारतीय अगर किसी साथी ने अगर ये बात की है तो उनको तो भारतीय, देखें जितने भी मीडिया देखता भी हूँ, उनका प्रॉब्लम सिर्फ अभी एक ही है, वो उनकी काउंटिंग नहीं पूरी हो पा रही है। तो मैं कल देख रहा था कुछ, मैं इंडियन चैनल्स कल देख रहा था,
मुझे रोने का तो अच्छा
मैं किसी रोने पर तो इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं है शैला जी। वो एक नया सदर मुमलिकत दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका तैयार कर रहे हैं, पता कौन है? एलॉन मस्क।
हाँ 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 बिल्कुल, अब मीम्स आ रहे हैं ना उसके तो। हाँ।
नए मीम छोड़ दे, बाकायदा मैंने इंडियंस जो वीलॉगर्स हैं और बड़े वीलॉग मतलब ऐसे वीलॉगर्स हैं जिनके 6 मिलियन 20 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं और वो नैरेटिव बिल्ड करने वालों में हमारे हिंदुस्तान में, वो ये कहते हैं कि जी ये नेक्स्ट प्रेजिडेंट जो है वो क्या सवाल उस पर बना रहे हैं, वो मतलब नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना, बात ये है कि वो लॉबिंग कर रहे हैं कि क्या एलॉन मस्क जो है वो
हर जगह जो है वो इंटरफेरेंस है।
बहरहाल बात कहां से चली कहां पहुंच गई, मैं इस बात से बिल्कुल, देखें हमें इस चीज को समझना होगा, हमारी जो तारीख है चाहे वो इस्लामी हो या हमारी आजादी वाली जंग के बाद से हो 1947 के बाद से, वो बहुत ही फैब्रिकेटेड हो गई है। बहुत से लोग, हर आदमी ने अपनी उसको कर लिया है, तो हम किसी को वो ना कहेंगे यार आप गलत हैं ये सही हैं। अब ये कॉलर थे, उन्होंने ये भी बात की जब आरुफा मुजफ्फर साहिबा कॉल प्रोग्राम कर रही थी और 9 और 10 मुहर्रम के रोजे की, सर अगर आपको लगता है 9 और 10 का मुहर्रम का रोजा नहीं होना चाहिए तो आप ना रखें, इसमें कोई इशू नहीं, और रोजा 9 और 10 नहीं है बेसिक, 10 का रोजा तो आज से नहीं, आप अगर पीछे हिस्ट्री चले जाएं तो, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं मंडे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि वो निकाल के ले आऊं सारी हिस्ट्री कहीं से के पढ़ लूंगा बैठ के भाई ये चीजें यहां आए, तो 10 का रोजा तो था ही हमेशा, आज से नहीं। और जहां बात आई 9 की, अगेन इस बात तक आपकी बात सही है कि 9 का रोजा कोई वो नहीं, कहीं नहीं मिलता 9 का रोजा। सवाल ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, जब उन्होंने कहा कि 10 का रोजा जो है वो यहूदी भी रखते हैं, तो या तो एक आगे मिला लो या एक पीछे मिला लो, तो 2 रोजे इसको अपने मुकम्मल कर लें, अदरवाइज इससे पहले एक ही दिन का रोजा रखा जाता था 10वां। अब सर बात आपने की कि जाहिर अगर रोजा रखा होता तो वो प्यासे, जाहिर मामलात हम सब जानते हैं वहां क्या हुआ, 7 से पानी बंद किया गया, जिस तरीके से जो एक मैं कहता हूं जुल्म हुआ उसकी कोई 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 मिसाल नहीं है इस पर, तो चाहे आप सुन्नी हो आप बना लें, सर से बाहर निकले, इससे बाहर निकले
के ग्रैंड किड से, बस बस वो हमने तो
इस चीज को देखते हुए हमें ऐसी चीजों पे मसाइल, यही तो वो ताकतें जो हमें आपस में लड़ाकर, अब आप सोचे मैं इस चीज को एयर पे अवार्ड हूं, मुझसे साहब कल भी मिले, वो अब वही बातें चले, मैं बोल देता अब वो अहले सुन्नत ऐसे कर लेते हैं ठीक है आप इससे खुश रहते, उन्होंने कहा जी 9 जो 10 मुहर्रम है वो तो हफ्ते को है, मैंने कहा नहीं भाई 10 मुहर्रम तो संडे को है, कहते वो तो नहीं हम तो, अब हम कहाँ पहुंच गए, अब हमें इस चीज को
हम तो एक हज नहीं करते, हम तो एक ईद नहीं करते,
ये मुहर्रम फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम 45 एज शाहिया जी, मैं इस पर ये सोच रहा हूँ, एक ये चीज रह गई थी हमारे आपस में कि हम 10 मुहर्रम हो या 9 मुहर्रम हो, ईदें तो हम कई मनाते रहते हैं आपस में, लेकिन ये इस तरह से कर देना, अब सोचे ना ये कौन लोग कर रहे हैं, ये हम और आप ही हैं सर, हर साल, चाहे मैं किसी शिया आलिम को या सुन्नी आलिम को कसूरवार नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग जो लोग हैं ना सर, लोग हम जो कम्युनिटी हैं, आप चाहे वो आप अहले तशरी हो या मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं इस पे बिलीव नहीं रखता, हमारे और आपके जितने भी उलमा अकराम है ना, उनको बयान करने के लिए हर साल कोई नई चीज आती है उनके पास,
बिल्कुल,
और जबकि ये वाकया एक ही बार हुआ है और एक ही बात चीजें हो गई,
हिजरी कैलेंडर है ना, हिजरी कैलेंडर में आपने कैलकुलेट,
लेकिन हर साल उसको अपनी लफाजी में बना के बताना और फिर इन चीजों को लड़ाना के जी आपस में नहीं होना चाहिए, मुसलमान मुसलमान है सर, मुसलमान मुसलमान होना चाहिए, मेरे मैं तो सारी जिंदगी बचपन से शाहजा जी मेरे आसपास जितने लोग थे ना, वो यकीन दोस्त यार मेरे कराची में वो सारे शिया दोस्त
हैं, मेरे भी शिया हैं, मेरे
लेकिन
भी
कभी ये हमने अपने बचपन में, मैं जवान हो गया, हमें तो इस चीज को सुनने को मिलता ही नहीं था कि यार कि भाई तू शिया और मैं सुन्नी हूँ,
नहीं नहीं नहीं, सब मिलके बैठते थे भाई, मिलके बैठते, आज आज तो पाकिस्तान और ईरान को भी समझ आ गई है कि हमारे हमें जो है लड़ाने वाले शैतान बहुत,
कौन है ये, कौन लोग हैं जो 9 एक 10 मुहर्रम संडे को है, एक 10 मुहर्रम जो है वो सैटरडे को है,
सैटरडे को
ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, कभी सोचा है इसके बारे में, अच्छा जी रोजा नहीं रख सकते आप 9 और 10 का, सर सोचे इसके बारे में, सोचे इसके बारे में, ये आके एयर पे बोल देना और ऐसे करना कि आप आके क्लियर करें कि आप अहले सुन्नत, क्यों मैं बोलूं कि मैं अहले सुन्नत हूँ सर, मैं मुसलमान हूँ,
आके वो क्यों हमें एक्सप्लेन,
मैं क्यों अहले सुन्नत बोलूंगा, आप आके बोले मैं अहले तशरी हूँ, क्यों बोलूं, आप क्यों नहीं कह सकते, आपके अंदर इतना क्यों नहीं, आके बोलते जी मुसलमान हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स इट,
अल्हम्दुलिल्लाह,
तो इस चीज को सोचे आप भी, और आप माशाल्लाह सब लोग मुझसे कई ज्यादा इल्म रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं लोगों को, मेरी तो नॉलेज अभी बहुत कम है, चीजें समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता है वो पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन अपना थोड़ा सा जज्बात से बाहर निकल के रियलिटी को फेस करिए, तफरके पैदा ना करिए, अमन को कायम कीजिए, एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, तो मुझे लगता है कि हम बेहतर माशरा जो है वो बना सकेंगे, और उस
रिस्पेक्ट तो करनी नहीं हमने एक दूसरे की, रिस्पेक्ट वो नहीं बिल्कुल नहीं करनी है,
चलें जी शाहजा जी आपका टाइम बहुत ले लिया, माजरा चाहता हूं,
नहीं नहीं कोई बात,
और
आप बात बहुत अच्छी कर रहे थे और मैं चाहती थी कि आप कंटिन्यू कर लें,
नहीं नहीं आपने बिल्कुल टाइम दिया और
कंटिन्यू
रियली अप्रिशिएट कि आपने इस चीज को किया, और तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं जनाब, अब हम आपको खबरों की तरफ ले चलते हैं, अगर अगर मेरी बात से अगर किसी ने भी जो है वो भजन, किसी की दिल आजारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम सबको सोचना चाहिए कि हम क्यों आके बोलते हैं जी आप ये हैं फला मैं हूँ, आप
ब्रेक ले लेते हैं हम,
तो मुसलमान होने का जो है ना वो फखर करेंगे, अल्लाह ने आपको मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया, और अल्लाह से दुआ भी ये करेंगे
अच्छे इंसान बने, अच्छे इंसान बने,
अच्छे इंसान बन जाए और अच्छे मुसलमान बन जाए, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी आज का मैसेज है, इन चीजों पे ना लड़ेंगे जी, 9 का रोजा नहीं तो 10 का रोजा नहीं तो 11 का नहीं तो 12 का नहीं, इस चीज पे जो है फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। चलें एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद शैलजा जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है जनाब, गर्मा गर्म खबरें लेकर, और फिर खबरें भी आपके साथ शामिल करेंगे। आपका नंबर 416-620-1778 पर आप हमें कॉल भी कर सकेंगे।
जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 647-702-2023-647-702-23।
लाइसेंस नंबर 10394।
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, मल्क वाटिंग कबाब में सिजलिंग बारबेक्यू आइटम,
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
خوبصورت دانت، با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو، آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی زمین، فلنگ گراؤنڈ بریجز، کلیننگ، ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس، فری کنسلٹیشن، دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا، 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، 299-7466. ویلج ٹیسٹ پورے آنٹیریو کا سب سے بڑا حلال سپر ریسٹورینٹ ہے. کانٹینینٹل، چائنیز، باربیکیوز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، کڑھائی آئٹمس ہیں اینڈ سویٹس اینڈ فروٹس میں بے انتہا ورائٹی ہے. بہترین فیسٹ انجوائے کیجیے ویلج ٹیسٹ پہ. آفٹر مسز ساگا دے آر ان اوک ویل ایز ویل. ویلج ٹیسٹ، 9052323663. ویلج ٹیسٹ.
ایو، اتنا خوبصورت گھر!
آپ نے بھی بیسمنٹ کی رینوویشن کروانا ہے تو رابطہ کرو، ایک چیتا میرے ہاتھ میں لگا. کیا کمال کی رینوویشن اور دام بہت مناسب.
کون سی رینوویشن؟ ٹیرف لگ رہے ہیں، بھول جائے سب کچھ.
اے بابا چنتا نہ کرو، نیشک رینوویشن اینڈ کنسٹرکشن، لیگل بیسمنٹ، سائڈ اینٹرنس، واش روم، کچن، پینٹ، فلورنگ، تمام کام سٹی پرمٹ کے ساتھ کروا کے دیتے ہیں. بہت مناسب دام ہے. اور بھائی آزمائش شرط ہے، گارنٹیڈ پروفیشنل سروس. کال علی، 416-838-7837. 416-838-7837.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں 770 AM ڈائل پر پروگرام ساز و آواز. بہت معذرت سر، آج نیوز اور شاہدہ جی کے ساتھ بھی بہت معذرت، نیوز تھوڑی لیٹ ہو گئی. بس وہ دل کی باتیں کبھی لبوں پر آ جاتی ہیں، لیکن آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. شاہدہ جی نیوز کی طرف چلتے ہیں.
ہاں جی ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی رجا باشا. اور آپ کو کوئی بھی ہوم اور آٹو انشورنس چاہیے، آپ ان کو کال کر لیں. اگر آپ کو اچھی جیولری چاہیے تو ہمارے اسلم بھائی کے پاس پائل جیولرز پہ چلے جائیں. اگر آپ کو اپنے دانتوں کا کچھ بھی کرانا ہے تو ہماری ڈاکٹر نازیہ رحمان جو ہے ان کے پاس آپ ڈینٹسٹری آن مسز ساگا میں یا جا سکتے ہیں، یا کہ برامپٹن میں جو ان کے کلینکس ہیں وہاں پہ. اگر آپ کے ٹرک میں آپ کو اچھا آئل ڈالنا ہے تو پھر کوئک ٹرک ٹیوب QTL کے پاس آپ جائے. اور اچھا کھانا کھانا ہے، آج ویکینڈ ہے تو آپ جا سکتے ہیں فیصل چٹھا صاحب کے پاس اپنے یہاں پہ ویلج ٹیسٹ میں، دو ان کے ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ. اور اگر اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں آپ تو پھر سپیئر اینڈ مکھے جو ہے اس پہ آپ جائیے، بہت ہی زبردست آپ کو وہاں پہ اٹالین فیبرک کے کپڑے میں رہیں گے. اور اگر آپ کو بہت سارا کم پرائز پہ الیکٹرانکس چاہیے تو پھر آپ جائیں سلطان بھائی کے پاس، برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، ہم سب سے پہلے تو شروع کر لیتے ہیں. آپ کو ہم نے کل جیسے کہ بتایا تھا کہ بہت سارے جو موٹر کمپنیوں کے سی اوز تھے، فورڈ موٹر کمپنی کے، جی ایم کا، سٹیلنٹس سے، تو وہ ملے تھے. تو اب پریشر جو ہے اصل میں بہت بڑھتا جا رہا ہے کارنی صاحب کے اوپر کہ یہ جو ای وی سیلز مینڈیٹ ہے اس کو جو ہے آپ چینجز لائے. اور آج کی جو اسپوکس پرسن فار انوائرمنٹ منسٹری جولی ڈبلیوسن جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم انگیج کریں گے اور انڈسٹری کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. تو یہ ذرا تھوڑی سی لچک جو ہے گورنمنٹ نے دکھائی ہے کہ وہ ماڈیفائی کر سکتے ہیں اس کو. یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا بل 2023 میں، جس میں کہ کہا گیا تھا کہ 2035 تک کینیڈا جو ہے بالکل زیرو امیشنز کی طرف جائے گا، اور یا تو فلی الیکٹرک یا کہ پلگ ان بیٹری ہائبرڈ جو کارز ہیں وہ سامنے آئیں گی. اب یہ جتنے بھی سی اوز جو ملے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کو ٹرمپ صاحب کو، ویسے بھی وہ ان کا بگ بیوٹیفل جو ہے بل جو ہے وہ ابھی اس وقت ایز وی سپیک ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ٹرمپ صاحب نے سائن کر دیا ہے، سو اٹ ہیز بیکم اے لا آلسو. تو اس کے رہتے ہوئے انہوں نے جو کل ملاقات کی تھی، ان کو پتا تھا کہ جی اب یہ بل بھی سائن ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ زیرو ایمیشن ویکلز جو ہے ہم نہیں میچ کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ای ویز ہی نہیں بیچ سکیں گے، یعنی الیکٹرانک جو کارز ہیں وہی، الیکٹرک کارز جو ہے وہی نہیں ہم بیچ سکیں گے. اور یہ جو ٹریڈ ڈیل بھی ہونے والی ہے July 21st کو امریکہ اور کینیڈا کے بیچ میں، اس کا بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ ریزلٹ کیا آنے والا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا جناب، یہ جو آج کی دوسری خبر ہے اس نے بہت آنکھیں چوکائی ہیں لوگوں کی. کینیڈا نے اپروو کیا 17,600 ریہیبلیٹیشن اپلیکیشن آف دا پیپل ود کرمنل ریکارڈز. ارے واہ کیا بات ہے. یہ آج ساری ڈیٹیلز جو ہے ان دا لاسٹ یو نو کہ 10 ایئرز میں یہ سارا کچھ ہے. یہ امیگریشن ریفیوجیز एंड सिटीजनशिप कैनेडा IRCC जिसको बोलते हैं, ये इन्होंने मीडिया से आज बात की है। उन्होंने कहा जी कि फ्रॉम 2014 टू 2024 ओवर 25,350 फॉरनर्स जो उन्होंने सबमिट किए थे अपने एप्लीकेशन, और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। वाह क्या बात है। और वो कहते थे हमको माफ कर दे और हमको आने दे कैनेडा के अंदर, और हमको या तो वर्क या स्टडी वीजा आप दे दे और हम अप्लाई करेंगे फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए और फॉर शॉर्ट विजिट जो है हमको आने दे। वो कहते हैं जी इनमें से 70% जो थे, 70% आप सोचें जरा कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग जो थे, 70% जो थे इनको अप्रूव किया गया, 20% को, सिर्फ 20% को रिफ्यूज किया गया, और जो 10% एप्लीकेशन थे वो विदड्रॉ उन्होंने कर लिए थे लोगों ने। तो इसके ऊपर इन्होंने आज कहा है कि कैनेडियन की सेफ्टी जो है हमारी हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहेगी। भाईजान 70% जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग थे उनको तो आपने मुल्क में आने दिया, एंड नो वंडर के क्राइम्स आपके मुल्क में कितने इसलिए क्यों बढ़ गए हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारा प्रायोरिटी है। वो कहते हैं जी कि डिसीजन टू अप्रूव और रिफ्यूज रिहैबिलिटेशन एप्लीकेशन जो है वो बनाई जाती है इमिग्रेशन ऑफिसर्स से, और बड़े वो एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं, तो उनको पता नहीं चल रहा है। हम जैसे शरीफ लोगों से दो दो इन्होंने मांगे कि जी हम मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट का भी एक आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए, आप जी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से भी आप मंगवाए। तो ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे जो आपके पास था ऑलरेडी, उनकी आपने एप्लीकेशन फटाफट आपने जो है वो की है। तो फिर आप कहते हैं जी कि ये बड़े एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन के ऑफिसर्स हैं, तो इनकी मर्जी पे होता है कि वो किसको अप्रूव या रिफ्यूज करते हैं। वाह क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी कि पीपल विद पास्ट कन्विक्शंस आउटसाइड कनाडा मस्ट डेमोंस्ट्रेट के अगर उनको रिहैबिलिटेट करना है तो वो कनेडियन सोसाइटी को कोई जो है थ्रेट पोज नहीं करे, यानी जो आपके पास इमिग्रेशन लेने आ रहा है वो बताएगा गन्स लेकर आएगा या कोई बॉम्ब लेकर आएगा, आपको बताएगा कि जी मैं बहुत बड़ा टेरर, उसे तो मस्कीन बन के ही आना ना आपके पास। अब ये तो आपकी असेसमेंट है ना जब आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख रहे हैं कि आप उसको आउटराइटली ना बोल दो। बहरहाल जी, तो ये आज की बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली और बहुत ही खतरनाक जो है ये रिपोर्ट है, और डिपार्टमेंट जो उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने एप्लीकेशंस जो थे वो जो लोग विजिट करना चाहते थे कनाडा को शॉर्ट पीरियड के लिए वो कितनी थी, वो नहीं बताया, वर्सेस वर्क एंड स्टडी एंड परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस उसका कुछ नंबर रेशो नहीं दिया है। और वो कहते हैं जी IRCC जो है वो फिल्टर नहीं करती है एप्लीकेशन इन लोगों की कि इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन या इनका, तो मतलब है फिर आपका सिस्टम इसका मतलब है फ्लॉड है फिर, अगर आपने सारा कुछ जो है वो छोड़ा हुआ है उनके ऊपर इमिग्रेशन ऑफिसर्स के ऊपर, तो फिर ये बाकी शरीफ लोगों के लिए इतने ड्रामे किसके लिए है ना। इतने लंबे लंबे वो लोग जो बेचारे पाकिस्तान से शरीफ लोग अप्लाई करते हैं, ओ तीन तीन चार चार पांच पांच साल उनकी एप्लीकेशन के कोई जवाब ही नहीं आ रहे हैं, और क्रिमिनल्स के आपने फटाफट 70% यानी आप की अपनी खुद की रिपोर्ट बोल रही है। वाह जी वाह क्या बात है। GTA होम सेल्स जो है जी वो जरा नीचे आ गई है 2.54% कंपेयर टू 2024, और 6,243 प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेची गई है। टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड जो है उसने कहा जी सेल्स तो 8.1% ऊपर गई है मई में, 19,839 न्यू प्रॉपर्टीज जो थी वो लिस्ट किए गए थे GTA में लास्ट मंथ में, अप 7.7% कंपेयर टू 2024। और इसी तरह क्योंकि मॉर्गेज रेट्स जो है अब आगे नीचे आगे है तो होम ओनरशिप वो कहते हैं कि लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं और जो है निगोशिएट कर रहे हैं कि कोई प्राइसेस के अंदर हो जाए डिस्काउंट्स हो जाए तो वो खरीदें। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है इट हैज डिक्रीज टू 5.4% कंपेयर्ड विद ईयर अर्लियर, एंड इट इज जस्ट ओवर 1.1 मिलियन। कॉम्पोजिट बेंचमार्क प्राइस जो है वो भी नीचे आ गई है 5.5% ईयर ऑन ईयर, और लिस्टिंग्स जो है वो हिट कर रही है 31,603 लास्ट मंथ की थी, विच इज अप 30.8% from June 2024's inventory of 24,169 homes. तो जनाब ये है, हमास के लीडर्स जो कि बेस्ड इन दोहा हैं यानी कि कतर में हैं, उनको ऑर्डर किया गया है कि इमीडिएटली हैंड ओवर करें अपने पर्सनल वेपन्स, और ये सारे के सारी बात जो है ये कतारी मीडिएटर्स जो बैठे हुए हैं इजिप्ट के साथ और USA के साथ के एक सीज फायर यहां पे आ सके, जो कि मुझे तो वैसे नजर नहीं आ रहा लेकिन ऑन गोइंग जो टॉक्स हैं उसके अंदर जरा थोड़ा सा मे बी ब्रेक थ्रू करने के लिए वो कह रहे हैं कि यहां पे सीज फायर आ जाए गाजा में और हॉस्टेजेस जो है वो रिलीज हो जाए। तो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है इनको लीड तो USA कर रहा है लेकिन कतर और इजिप्ट जो है इलाके के अंदर ये चीज को बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर जाहिर जबरीन वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हमास इज आर्म्ड विंग इन वेस्ट बैंक, और मोहम्मद इस्माइल दरवेश चेयर ऑफ हमास इज एडवाइजरी शूरा काउंसिल, اور جنہوں نے کہ ڈپلومیٹک مشنز جو تھے وہ کنڈکٹ کیے تھے ایران اور ترکیے کے ساتھ، اور خلیل الحیا ہیڈ آف اے میسز نیگوشیٹنگ ٹیم جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر ہے. ان کو خاص طور پہ کہا گیا کہ بھئی آپ بالکل اپنے آرمز بھی رکھیں اور آپ جو ہے بالکل کوئی حماس کے ساتھ تعلق نہ رکھیں اور وہاں سے جو ہے بالکل اپنے فیکشن کو نکالیں تاکہ ایک لایا جا سکے. یہ ہے تو ویسے ایک سمبولک سٹیپ، لیکن اس کے اوپر زور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل نے دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اینڈ کریں وار تو ان کو بولیں یہ سرنڈر کریں اور یہ جو ہے نکل جائیں بالکل یہاں سے غزہ میں سے، یہ یہاں پہ نہ رہیں. یعنی کہ ہم جو ہے ظاہر ہے ہڑپنا چاہتے ہیں پورے پیلسٹائن کو، تو کوئی اب ریزسٹنس جوانی کی بھی جو ہے کوئی شو نہ کرے. تو بہرحال اب دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہوئے گا. لا میکرز جو ہیں یو کے اندر، انہوں نے آج ووٹ کیا ہے کہ یہ جو کیمپین گروپ ہے پیلسٹینین ایکشن، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جائے. اور لوگوں نے آج بڑا شور انگلینڈ میں مچایا ہے کہ یہ بالکل کنٹری کے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے اگینسٹ ہے. پارلیمنٹ کے اندر آج جو ووٹ ہوا ہے ذرا آپ دیکھیں، 385 اگینسٹ 26 ان فیور. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو انہوں نے ملٹری بیس پہ لاسٹ منتھ ایک ریڈ اسپرے کر دیا تھا، جس کی ہم نے آپ کو ڈیٹیلز بھی بتائی تھی اور دکھائی بھی تھی تصویر، اور وہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ یو کے کا جو سپورٹ کانسٹنٹلی چل رہا ہے اسرائیل وار میں غزہ میں، تو اس کے اگینسٹ یہ ہے. تو آج جو کریٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گروپ کو آپ نے جو بین کیا ہے یہ کہتے ہوئے، یعنی یہ آپ نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے یہ بھی اتنے ہی خطرناک جو ہیں وہ گروپ ہے جیسے کہ القاعدہ یا کہ آئیسز ہے، اور ان کا جو اب کرمنل افینس ہوگا کہ اگر کوئی بھی آدمی اس گروپ کے ساتھ حصہ لے گا. زہران سلطانہ جو کہ سسپینڈڈ لیبر پارٹی ممبر ہے، اس نے کہا کہ یہ جو ایک پینٹ اسپرے کر دینا ہے وہ ایک سوئسائڈ بامبر سے ملایا نہیں جا سکتا، سو اٹ از ایبسولیوٹلی ابسرڈ. اور یہ جو لا ہے آپ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں ڈائسنٹنگ وائسز کو خاموش کرنے کے لیے، اور جو لوگ سالیڈیرٹی دکھا رہے ہیں پیلسٹائن کو اس کو کرمنلائز کرنے کے لیے اور ٹروتھ کو چھپانے کے لیے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل یو کے جو ہے اس نے بھی یہ یو کے کی گورنمنٹ کا موو بہت زیادہ سلیم کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے لیگل اوور ریچ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ اتھارٹیز کو میسو پاورز دے گی ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹین پیپل سپریس سپیچ اور پروٹیسٹرز. لیکن پھر بھی آج جو تھے ویسٹ منسٹر جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور بڑا ڈیفائنس انہوں نے دکھایا. انہوں نے کہا کہ جو مرضی گورنمنٹ کر لے ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی اسرائیل نے اوور 300 جو ہے وہ پیلسٹینینز کو مارا ہے، یعنی کہ دا لاسٹ 48 آورز آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں سے 26 جو ہے اس کو تو میسکر کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے. 73 جو ہے وہ مارے گئے ہیں سنس ڈان، اور وہ اس میں سے 33 وہی ایڈ سیکرز تھے بچارے جو کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی ایڈ سائٹ پہ بچارے ایڈ لینے گئے تھے، اور ان کی انڈسکریمنیٹ جو ہم نے کل ابھی آپ کو رپورٹ بتائی تھی کہ جی ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، تو وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فورسز نے 13 لوگوں کے اوپر اٹیک کیا، اور 10 ان مواسی 16 ان مصطفیٰ حافظ اسکول جو کہ بچارے شیلٹر میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ڈسپلیس تھے فرام ویسٹ آف غزہ. اسرائیل نے آج ڈرون اٹیک بھی کیا ہے اس کے علاوہ بیروت کے اوپر، جس میں کہ ایک بندے کی ڈیتھ لیبنیز کی ہوئی ہے اور 3 جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ بالکل ایبسولیوٹ وائلیشن ہے آف سیز فائر. تو آپ سوچ لیں کہ جو ادھر غزہ میں سیز فائر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کتنا انہوں نے ریسپیکٹ کر لینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فرانچیسکا البنیز یونائیٹڈ نیشنز کی اسپیشل رپورٹر آن آکوپائڈ پیلسٹائن ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ تمام ملکوں کو کہ جس کے بھی ٹائز ہے اسرائیل کے ساتھ وہ اپنے فائنینشیل اور ٹریڈ ٹائز بالکل ختم کرے، آرمز کے اوپر ایمبارگو لگائے، یعنی کہ بالکل آرمز نہ دے اسرائیل کو، اور جتنی بھی گلوبل سپورٹ ہے اس کو بند کیا جائے. ان واٹ شی از کالنگ ایز اکانومی آف جینوسائڈ، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو بالکل آپ روکیں. آج جو بہت بڑی خبر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یو ایس اور کولمبیا کے بیچ میں تعلقات بے تحاشا خراب ہو گئے ہیں. اب آپ اس کو بولیں گے جی یہ بڑی خبر کیوں ہے، یہ بڑی خبر اس لیے ہے کہ کولمبیا انٹل ریسنٹلی یو ایس کا کلوزسٹ پارٹنر تھا لیٹن امریکہ کے اندر، اور جیسے کہ ہمیں سمجھا جاتا تھا کہ نارتھ امریکہ میں ہم بہت بڑے ان کے جو ہیں، اب کولمبیا جو ہے وہ ان کا لیٹن امریکہ میں بہت بڑا پارٹنر تھا. بہرحال یہ ہوا ایسے ہے کہ انہوں نے الیج کیا ہے کہ جی یہ جو ہے پلاٹ کر رہے ہیں اگینسٹ کولمبیاز لیفٹ ونگ لیڈر. سب سے پہلے یو ایس نے ریکال کیا اپنا چارڈی افیئرز جو ہے جان میک نمارا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بیس لیس ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया की तरफ से, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है. एंड दिस इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन बाय स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन टैमी ब्रूस. और उन्होंने कहा जी के यूएस जो है वो बिल्कुल उसने क्लियर कर दिया है इनको कि बायलैटरल टाइज जो हैं वो हम ऐसे नहीं चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई और ज्यादा डिटेल्स इसके ऊपर नहीं दिए हैं. ये उस वक्त हुआ जब कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेत्रो जो हैं उन्होंने अपने टॉप डिप्लोमैट जो डीसी के अंदर हैं अम्बेसडर डैनियल गार्सिया पेना उनको कहा कि भई तुम भी अब फिर वापस आ जाओ. तो जाहिर है चीजें बेतहाशा एस्केलेट कर गई और ये जो कोलंबिया के जो की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लॉरा सेराबिस उन्होंने जो है वो उन्होंने छोड़ दिया था पेद्रो की गवर्नमेंट ने उनको, और उन्होंने कहा था जी कि मेरे ख्यालात कुछ उनके साथ नहीं मिलते हैं तो मैं उनके साथ नहीं चल सकती हूं, जिसके ऊपर फिर बहुत सारे यूएस की तरफ से अलेजली एलिगेशन लगाए गए थे और फिर ये चीजें जो है इस तरह से खराब हुई हैं. तो ये अब आज बहुत हैरत की नजर से जो है इसको देखा गया है. यूएस के अंदर 4 लोगों की डेथ हुई है और 14 बहुत गंभीर अंदाज से जो है वो वूंडेड हैं इन गन फायर, जो कि एक गनमैन बहुत सारे आए उन्होंने इनके ऊपर गोलियां चलाई आउटसाइड अ लाउंज इन डाउनटाउन शिकागो. और ये इसलिए इसकी ज्यादा अहमियत है कि यहां पे जो रैपर है एक मेलो बकल्स वो जो है जिसको के कहा जाता है मेलनी डॉयल भी, वो एक बहुत बड़ी इधर प्राइवेट पार्टी कर रही थी और अपना जो है रिलीज टू सेलिब्रेट द रिलीज ऑफ अ न्यू एल्बम, तो उसके लिए बहुत सारे यहां पे लोग जो थे वो जमा हुए थे. पुलिस के मुताबिक एक व्हीकल जो ट्रेवल कर रही थी शिकागो एवेन्यू पे इन रिवर नॉर्थ नेबरहुड वो यहां पे आई और उसने जो है यहां पे जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और ये ज्यादातर लोग जो जमा हुए थे उनकी एजेस थी 21 से 32 के बीच में, जिसमें के जो 4 लोगों की डेथ हुई उसमें से 2 आदमी और 2 औरतें थी और बाकी के भी कुछ जो वूंडेड हैं उनकी हालत काफी क्रिटिकल है. वो जो ड्राइवर था गाड़ी का वो फिर वहां से भाग गया, इसलिए कोई अरेस्ट नहीं किए जा सके है. तो पुलिस अब कह रही है कि भाई किसी के पास भी कोई एनोनिमस टिप है तो वो हमें दे सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है इन सस्पेक्ट्स को. तो आज वहां पे शिकागो में बहुत बड़ी खलबली मची, यानी कि जाहिर है कि सेलिब्रिटी पार्टी चल रही थी और उसके अंदर आके कोई इस तरह से गोलियां चलाए तो जो है. तो पुलिस कह रही है कि हम अभी भी डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका मोटिव क्या था. वाइल्ड फायर्स जो हैं जी वो तो वाइल्ड फायर्स की तरह ही वाइल्डली फैलती जा रही है इसके अंदर यूरोप के अंदर. ग्रीस के अंदर 5,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि बेताशा इलाका जो है वो अब आग के लपेट में आ गया है. ग्रीस के अंदर 230 फायर फाइटर्स, 46 फायर सर्विस जो व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स है बैटल कर रहे हैं. क्रीट का जो आइलैंड है इसका उसके ऊपर एक और जो फायर रेज कर रही है हेलकिडकी के अंदर, यहां पे भी 160 फायर फाइटर्स और 49 व्हीकल्स जो है वो इन्वॉल्व है. इसके साथ साथ 500 फायर फाइटर्स जो है वो जर्मनी के ईस्ट के अंदर भी वाइल्ड फायर्स को जो है बुझाने की कोशिश कर रही है, जिसमें 2 इमरजेंसी वर्कर्स जो है वो भी जख्मी हुए हैं. हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया है फ्रॉम ग्रोयिश शेडे और जो आग है वो बहुत ज्यादा जो हॉट लैंड है उसमें फैलते ही चली जा रही है और सैकड़ों हेक्टर जमीन जो है उसने बहुत ज्यादा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो ये फायर उसने खराब किया. इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, इटली, पोलैंड, स्लोवेकिया, स्पेन, इन सब के अंदर भी जो आग है वो बहुत ज्यादा फैलती जा रही है और उसको रोकना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है. उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई है, 40 डिग्रीज को इस वक्त टच कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्रीज जो है उन्होंने एक्सट्रीम या तो ड्राउट या एक्सट्रीम हेल्थ अलर्ट्स जो है वो भी जो है वो डाल दिए हैं और उन्होंने कहा जी कि लोग ज्यादातर अब इनडोर्स रहे क्योंकि हीट वेव्स इस साल जो है वो जरा अर्लियर देन यूजुअल जो है वो आ गई है एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर चली गई है हीट यूरोप के अंदर. तो इसलिए ये सारे मसले जो है वो चल रहे हैं. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने आज तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान के साथ जो है बातचीत की है. वही जो 17th इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट चल रहा है खंडकाई में वहां पे, तो तैयब अर्दोगान के साथ आज भी जो इन्होंने बातचीत की उसमें कहा जी कि बायलैटरल टाइज, रीजनल डेवलपमेंट्स, اور کولیبریشن ان ٹریڈ، ڈیفینس، انرجی، کنیکٹیویٹی اور انویسٹمنٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بھی لوگوں نے کہا ہے کہ اب ہم کو ترکیے کے ساتھ زیادہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقاتیں ایرانین پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اس میں بھی انہوں نے ریجنل پیس کی بات کی اور ڈائلاگ اور ڈپلومیسی پہ زور دیا. اور اب دونوں نے ایران اور پاکستان کو شاید اب سمجھ آ گئی ہے آپریشن سندور کے بعد کہ جی اب ہم کو میوچلی کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے، کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب نے اس جو سمٹ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو لو امیشن کوریڈور جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے مقابلہ کیا جا سکے. پاکستان از امنگ 10 کنٹریز جو کہ موسٹ ولنریبل ہے ٹو کلائمیٹ چینج، اور جس کے اوپر پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ جی ہمارا تو قصور نہیں ہے زیادہ، کیونکہ ہمارے ملک سے تو اتنا زیادہ امیشنز نہیں ہے. جو زیادہ پولیوٹرز ہیں ان کے اوپر آپ کو ٹیکسز یا جو بھی لگانے ہیں وہ لگاؤ، لیکن سفر ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک لو امیشنز کوریڈور بنانا چاہیے اور ریجنل کاربن مارکیٹ جو ہے اس کو کے لیے کوآپریشن ہم کو، کلائمیٹ فائنینسنگ کا کوآپریشن ہم کو کرنا چاہیے. تو اچھی چیز ہے اگر ایسا جناب کوئی کوآپریشن جو ہے وہ آ جائے. البتہ ان سارے لیڈرز کے ساتھ انہوں نے ریجنل کنیکٹیویٹی جو ہے اس کی بھی بات کی ہے کہ سارے جو کنٹریز ہیں ہم کو یا تو روڈ سے یا ٹرین سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے آج ڈسمس کیا ہے جی یہ میڈیا کے رپورٹس کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کر سکتے ہیں، اور دونوں کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو بات، یعنی کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے. تو یہ صرف جو ہے یہ سوچا ہی جا رہا ہے، میڈیا ہی بول رہا ہے کہ شاید ان کے بیچ میں ہو سکتی ہے. تو اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس نے کہا جی کہ اگر گورنمنٹ ریلی سیریس ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے پی ایم ایل این کی ہے، اگر وہ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے گراؤنڈ ریالٹی سمجھنا پڑے گا. فیڈرل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے آج رپورٹرز کو اسلام آباد میں بتایا کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے تو ایک گڈ ول جسٹس دکھاتے ہوئے بجٹ